पिछले पाठ में घटगत परिमाण आदि ग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षः अपि अधिकम कारणम इष्यते, इसको जल्दी जल्दी में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें एक पिछले पाठ का भूल सुधार करना है। इसमें जो चतुष्टय सन्निकर्ष है, इसका हमने अर्थ ये बताया था कि चौथा सन्निकर्ष, जबकि ऐसा नहीं है। चतुष्टय सन्निकर्ष का मतलब होता है कि चार प्रकार का सन्निकर्ष। तात्पर्य ये है कि घट में रहने वाला जो रूप है उसका प्रत्यक्ष तो हो जाएगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से, लेकिन घटगत जो परिमाण आदि है, माने घट में रहने वाला जो परिमाण है, संख्या है, इसका जब ज्ञान करना हो तो उस समय में इसके अतिरिक्त, माने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के अतिरिक्त जो है, और चार प्रकार के सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है। वो जो चार प्रकार का सन्निकर्ष है उसी को चतुष्टय सन्निकर्ष यहाँ पर कहा गया। अब वो चतुष्टय सन्निकर्ष कौन है, तो उसके लिए आगे इन्होंने बताया कि चतुष्टय सन्निकर्षो यथा, ये बात मैंने पिछले पाठ में बताई है कि चार प्रकार के ये सन्निकर्ष कौन है। इसमें आप ऐसा करो इसको समझने के लिए कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में एक तो इंद्रिय है, दूसरा जो है अर्थ है। तो इंद्रिय में भी दो रूप होते हैं और अर्थ में भी दो रूप होते हैं। क्या? तो एक तो होता है इंद्रिय का अवयव और दूसरा होता है इंद्रिय अवयवी। इंद्रिय अवयव एक हो गया, दूसरा इंद्रिय अवयवी हो गया। ऐसे ही अर्थ में भी एक हो गया अर्थ अवयव, दूसरा हो गया अर्थ अवयवी। तो दो प्रकार का इंद्रिय हुआ, इंद्रिय अवयव, इंद्रिय अवयवी, और दो प्रकार का अर्थ हो गया अर्थ अवयव और अर्थ अवयवी। अब ये जो दो इधर और दो इधर हैं, उनमें से एक को एक के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इस तरह से जो सन्निकर्ष होगा वही है चतुष्टय सन्निकर्ष। तो उसको आप देखो पुस्तक में लिखा है, पहला जो सन्निकर्ष बताया इंद्रिय अवयवी है अर्थ अवयवी नाम, माने इंद्रिय अवयव के साथ अर्थ अवयवी का जो सन्निकर्ष है वो पहला सन्निकर्ष हुआ। दूसरा सन्निकर्ष इंद्रिय अवयवी के साथ अर्थ अवयव का सन्निकर्ष, ये दूसरा सन्निकर्ष हुआ। फिर इंद्रिय अवयवी है अर्थ अवयवानाम, इंद्रिय अवयवी के साथ इंद्रिय अवयव के साथ अर्थ अवयव का सन्निकर्ष, और चौथा है अर्थ अवयवी नाम इंद्रिय अवयवी नाम सन्निकर्ष। अर्थ अवयवी का इंद्रिय अवयवी का अवयवी के साथ जो सन्निकर्ष है वह चौथा सन्निकर्ष है। तो इसको समझने के लिए ना वही जो मैंने पहले बताया कि दो प्रकार का इंद्रिय, दो प्रकार का अर्थ, एक इंद्रियावयव, दूसरा इंद्रियावयवी, ऐसे ही अर्थावयव और अर्थावयवी। तो इन चारों को मिला करके जो सन्निकर्ष तैयार होता है उसी का नाम है चतुष्टय सन्निकर्ष। अगर परीक्षा में भी पूछे कि चतुष्टय सन्निकर्ष क्या है, तो आपको यही लिखना होगा कि चतुष्टय सन्निकर्षो यथा इंद्रियावयवै अर्थावयविनाम, इंद्रियावयविनाम अर्थावयवानाम, फिर इंद्रियावयवै अर्थावयवानाम, फिर अर्थावयविनाम इंद्रियावयविनाम सन्निकर्षः। अच्छा, यद्यपि मैंने पहले बताया हुआ है जब समवाय संबंध की बात हो रही थी कि समवाय संबंध कहाँ होता है, उसमें आया था कि अवयवावयविनो हो, गुण गुणिनो हो, क्रिया क्रियावतो हो, नित्य द्रव्य विशेषियोश्च संसर्ग समवाय। उस समय में अवयव और अवयवी को सिखाया था, तो उसी को केवल मैं याद दिलाता हूँ। अवयव मतलब होता है अंग, इसको अगर स्टैंडर्ड भाषा में कहना चाहो तो घटक कह लो। जैसे शरीर का अंग हाथ पांव सब है ना, इसी उसको हम घटक शब्द से भी बोलते हैं। तो अवयव हो गया घटक, और अवयवी जो हो गया उसको अंगी कहते हैं। अवयव हो गया अंग, तो अवयवी कौन होगा? अंगी। तो इसको अगर घटक वाली भाषा में बात करें तो अवयव को घटक कहेंगे और अवयवी को घटित कहेंगे, ठीक है। तो जो घटक होता है, अंग होता है, वह हुआ अवयव, और जो अंगी होता है, घटित होता है, वह हो गया अवयवी। तो शरीर अवयवी होता है और हाथ पांव आंख कान नाक ये सब जो है उसका अवयव होता है। ऐसे ही इंद्रिय का भी जो है ना अवयव होता है, इंद्रिय के अनेकों अंग होते हैं। अब जैसे आंख से किसी वस्तु को हम देखते हैं तो क्या होता है कि आंख से निकल करके आंख की जो प्रकाश ग्राहक जो तरंग है वह अनेकों टुकड़ों में बट करके आंख से निकलते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जहां पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं उधर आप देखोगे ना तो चूंकि बहुत सारी हैं और बहुत दूर में फैली हुई हैं तो जहां तक वो आंखों की किरण जो है ना जाती है वहां तक की चीज़ दिखाई देती है और उसके बाद की चीज़ें जो है नहीं दिखाई देती हैं। तो अगर एक ही आँख से किरण निकले तो एक ही चीज़ दिखाई देगी, जबकि मान लो 50 चीज़ें रखी हुई हैं उसमें से 49 चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब हुआ ना कि 49 टाइप की आँख से किरण निकलती है, वो जो 49 टाइप की किरण है ना वही इंद्रिय का अवयव है, ठीक है। और वो तमाम अवयवों को जब जिस जहाँ एक जगह एकत्रित रहता है, समूह रूप में रहता है, वह तो उस समूह को हम अवयवी कहेंगे, ठीक है ना। तो अवयव अवयवी के लिए हमने कई सारे शब्दों को सिखाया, अवयव अथवा अंग अथवा घटक, ठीक है। इसी तरह से अवयवी के लिए घटित, अंगी और समूह, ये तीन तीन जो है ना हमने पर्यायवाची शब्द आपको बताए हैं। ये सारे शब्द जो है ना ग्रंथ में बार बार प्रयुक्त होते हैं और केवल इसी में नहीं, जब व्याकरण के ग्रंथ को आप पढ़ते हैं उस समय में भी जो है ना इन सब शब्दों की आवश्यकता होती है, इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से अभी तक जो है ना जो चर्चा हुई है पिछले पाठ में हुई थी कि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष जो है वह कब होता है, वो बताया कि घटगत जो रूप है उसके ग्रहण में संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष होता है इंद्रिय और विषय के बीच में, और उसी में बता दिया कि घटगत रूप का तो ग्रहण हो जाएगा लेकिन अगर परिमाण आदि का ग्रहण करना हो, घटगत परिमाण आदि का, तो उसके लिए चार प्रकार का जो अन्य सन्निकर्ष है उसकी आवश्यकता होती है। अब जो है ना आगे का पाठ है, अब तीसरा जो सन्निकर्ष होता है, याद है ना सन्निकर्ष 6 प्रकार का आपको बताया गया था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है जो 6 प्रकार का होता है। पहला संयोग नाम का सन्निकर्ष था, दूसरा जो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष था, तीसरा जो था वो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष था। तो अब संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष की चर्चा हो रही है। कहते हैं कि यदा पुनः चक्षुषा घट रूप समवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते, ऐसा है कि घट का ज्ञान अगर हुआ तो उसमें संयोग नाम का सन्निकर्ष रहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। घट में रहने वाला रूप का अगर ज्ञान हुआ तो वहाँ पर जो है संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष होता है दूसरा, और घट में रहने वाला जो रूप है उस रूप में जो रूपत्व जाति है, जाति को ही ना सामान्य भी कहा जाता है, तो रूप में कौन सी जाति रहती है, रूपत्व जाति रहती है। तो रूपत्व का जो ज्ञान होता है उसमें जो है ना ये सन्निकर्ष होता है, कौन सा, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, तीसरा जो सन्निकर्ष है वो होता है। वही पंक्ति में देख लेते हैं, यदा पुनः जब फिर से चक्षुषा माने चक्षु इंद्री के द्वारा घट रूप समवेतम, माने इसमें ऐसा समझिए कि तीन चीजें हैं, एक है घट, दूसरा है रूप, तीसरा है रूपत्व। अब उल्टा आइए, रूपत्व किस में रहेगा, रूप में रहेगा, और रूप किस में रहेगा, घट में रहेगा। और ये जो रहना होता है ना, ये सब समवाय संबंध से रहना होता है। रूपत्व जो रूप में रहता है वो भी समवाय संबंध से, और रूप जो घट में रहता है वह भी समवाय संबंध से। ठीक है, तो फिर से पंक्ति देखते हैं। जब चक्षुष इंद्रिय के द्वारा घट रूप समवेतम, माने घट के रूप में जो समवेत है, समवेत है माने समवाय संबंध से स्थित है, कौन? रूपत्व। तो उस रूपत्व आदि जो सामान्य है, सामान्य माने जाति, रूपत्व आदि जाति का जो है ना, जो आप ग्रहण करते हैं, मैंने बताया था ना, गृह्यते का मतलब ज्ञायते होता है शास्त्र में। तो जब रूपत्वादि सामान्य का ज्ञान होता है, रूपत्वादि जाति का ज्ञान होता है, तदा चक्षु इंद्रियम, उस समय में चक्षु जो है इंद्रिय होता, इंद्रिय का की भूमिका में होता है, और रूपत्वादि सामान्यम अर्थ, और रूपत्वादि जाति जो है वो अर्थ की भूमिका में होता है, मतलब विषय होता है, और अनयोह सन्निकर्ष, और इन दोनों के बीच में जो सन्निकर्ष होता है वह होता है संयुक्त समवेत समवाय नाम का सन्निकर्ष होता है। अब यतः, यतः मतलब होता है यस्मात्, यस्मात् मतलब यस्मात् कारणात्, माने ऐसा क्यों होता है। तो उस सन्निकर्ष को यहाँ पर समन्वय करके बताएंगे, उसमें घटाएंगे कि कैसे जो है ना ये फिट बैठता है। तो किसी चीज़ को फिट करने को ना संस्कृत में समन्वय कहा जाता है। तो ये जो संयुक्त समवेद समवाय नाम का सन्निकर्ष है वो कैसे है चक्षु इंद्रिय में और रूपत्वादि जाति के बीच में, वो बताते हैं कि संयुक्त समवेत समवाय, इसका पहले हम अर्थ समझ लें। इंद्रिय जो है ना अपनी ओर से जोर देते हैं कि इंद्रिय से जो संयुक्त हो, उस संयुक्त वाले में जो समवेत हो, और उस समवेत वाले में जिसका समवाय संबंध से रहना होता हो, वहाँ पर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। फिर से सुन लीजिए, इंद्रिय से जो संयुक्त हो, उस इंद्रिय संयुक्त में जो समवेत हो, माने समवाय संबंध से स्थित हो, और उस समवेत में जो जिसका समवाय संबंध हो, माने उस समवेत में जो समवाय संबंध से रहता हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि तीन वस्तु है, घट है, घट का रूप है, और रूप में रहने वाली रूपत्व जाति है। तो रूपत्व जाति जो है समवाय संबंध से रूप में रहेगी, और रूप जो है समवाय संबंध से घट में रहेगा। इस तरह से इंद्रिय से संयुक्त कौन होगा, माने इंद्रिय का संयोग संबंध किसके साथ होगा, घट के साथ होगा। तो इंद्रिय संयुक्त हो गया घट, और उस घट में समवेत कौन है, रूप है, क्योंकि घट में समवाय संबंध से रूप रहता है। तो समवेत हो गया घट रूप, और उसमें समवाय संबंध किसका है, तो रूपत्व जाति का है। तो इस तरह से इंद्रिय में और रूपत्व जाति में संयुक्त संवेद समवाय का सन्निकर्ष बनता है। यही आगे कहते हैं यतः करके, कि इस कारण से यहाँ ये सन्निकर्ष होता है कि चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु इंद्रिय से जो संयुक्त होता है घट, उस घट में रूपम संवेतम, उस घट में रूप जो है उसका वह समवेत होता है, माने समवाय संबंध से स्थित रहता है। तत्र माने उस रूप में रूपत्वस्य समवायात्, उस रूप में रूपत्व का जो है वह समवाय संबंध होता है। इसलिए यहाँ पर जब हम रूपत्वादि सामान्य का प्रत्यक्ष करते हैं, तो उस समय में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होगा वो होगा संयुक्त समवेद समवाय नाम का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सोढ़ा सन्निकर्ष की बात थी, उसमें तीन सन्निकर्ष की चर्चा हो चुकी है, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, और संयुक्त समवेद समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, अब चौथा जो सन्निकर्ष है वह है समवाय सन्निकर्ष, उसकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष, कि समवाय नाम का सन्निकर्ष कब होता है। याद है ना, सन्निकर्ष माने क्या बताया था, फाइनली सन्निकर्ष माने संबंध, कयोह मध्य संबंध, इंद्रियार्थयोर मध्य संबंध, इंद्रिय और अर्थ के मध्य में जो संबंध होता है उसी को हम यहाँ पर सन्निकर्ष शब्द से जानते हैं। तो कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष, माने कब जो है समवाय नाम का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। तो फिर बताते हैं कि यदा श्रोत्र इंद्रियेन शब्दो गृह्यते, आप जानते हैं ना कि शब्द का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है, तो श्रोत्र इंद्रिय से होता है। श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं कर्ण इंद्रिय को, माने कान को संस्कृत में श्रोत्र कहा जाता है। तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब शब्द का ज्ञान होता है तदा श्रोत्रम इंद्रियम, उस समय में श्रोत्र जो है इंद्रिय की भूमिका में होता है। शब्द अर्थ और शब्द जो है अर्थ बनता है, माने शब्द जो है उस इंद्रिय का विषय बनता है। और अनयोह सन्निकर्ष समवाय, और इन दोनों का जो सन्निकर्ष है वह समवाय नाम का सन्निकर्ष होता है। अब यहाँ पर जो है कुछ और भी बात बता रहे हैं कि ये श्रोत्र इंद्रिय जो है ना उसका लक्षण बता रहे हैं कि श्रोत्र इंद्रिय क्या होती है, कैसी होती है। तो कहते हैं कि कर्ण सस्कुली अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, कर्ण सस्कुली अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, माने श्रोत्रम किसे कहते हैं, श्रोत्रेंद्रिय किसे कहते हैं, तो नभः श्रोत्रम, नभः माने आकाशः, माने आकाश जो है ना वही है श्रोत्रेंद्रिय। तो कहा कि आकाश जो है ये तो सर्वत्र रहता है, जहाँ जहाँ शून्य है, जहाँ कुछ भी नहीं रहता है, रिक्त रहता है, वहाँ पर आकाश होता है। जैसे घर है ना, तो घर के बीच में जहाँ सामान रखा हुआ है वहाँ तो आकाश नहीं है, लेकिन जहाँ सामान नहीं है वहाँ पर आकाश है। अब छोटा सा और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कप है, ग्लास है, तो उसके अंदर जो जगह है ना वो शून्य है, तो उसी शून्य को हम आकाश कहते हैं। तो कप में रहने वाला जो आकाश है उसका अवच्छेदक कौन है, कप है, और वह आकाश कप से अवच्छिन्न हुआ। पात कप तो अंग्रेजी में हो गया, उसको संस्कृत में कहेंगे तो पानीय पात्र कहेंगे, या उष्णोदक पात्र कहेंगे, चाय पात्र कहेंगे। तो उसका वह जो चाय पात्र में होने वाला रहने वाला जो आकाश है उसका अवच्छेदक कौन है, अवच्छेदक माने दूसरे आकाश से कप वाली वाले आकाश को अलग करने वाला, अवच्छेदक का अर्थ होता है पृथक कारक, पृथक करने वाला, इतर से पृथक करने वाला, अन्य से पृथक करने वाला, जो दूसरे से पृथक करे, ठीक है। तो ये जो चाय पात्र है उसमें रहने वाला जो आकाश है, ठीक है, और ग्लास में रहने वाला, पान पात्र में रहने वाला जो आकाश है, इन दोनों में कैसे अलग करेंगे, तो चाय पात्र में जो आकाश है उसका अवच्छेदक मान लेंगे चाय पात्र को, और ग्लास में जो आकाश है उसका अवच्छेदक मान लेंगे पानीय पात्र को। तो उसका तो क्या हो गया, उससे अवच्छिन्न आकाश होगा, जिसका अवच्छेदक होता है ना वह उससे अवच्छिन्न होता है। तो ये चाय पात्र जो है अवच्छेदक है, और उसमें रहने वाला जो आकाश है वह अवच्छिन्न है, तो उसको हम कहेंगे चाय पात्रावच्छिन्न आकाश। ऐसे ही पानीय पात्र में, पानीय पात्र अवच्छेदक हुआ और उसमें रहने वाला जो आकाश है वह अवच्छिन्न हुआ, उसको क्या कहेंगे, पानीय पात्रावच्छिन्न आकाश, ठीक है। तो लेकिन पाठ, ये रिकॉर्डिंग का समय हो रहा है तो आज यहीं रखते हैं, आगे यहीं से शुरू करेंगे।